आप हैं SBS हिंदी के साथ।
दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिटीजंस अमेंडमेंट एक्ट की, जो भारत में जिस पर विवाद हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे लोग उसका विरोध और समर्थन कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर शरद गुप्ता हैं, जो अध्यक्ष हैं FIA के, और वो CAA NRC का समर्थन करते हैं। तो हम उनसे समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक अप्रवासी भारतीय इस बारे में क्या सोचता है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
नमस्कार जी।
तो सर बताइए, आपके क्या विचार हैं इस बारे में?
देखिए, मेरा विचार ऐसे, मैं तो पहले आपको बता दूं कि जो आपने कहा मैं अध्यक्ष हूं, वो है हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ विक्टोरिया
जी,
जो कि 1989 में बनी थी। जहाँ तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का सवाल है, ये सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 में ही बनाया गया था, और उस समय एक सेक्शन 14A उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस सेक्शन 14A के में लिखा हुआ था कि भाई उसमें हम लोग नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू करेंगे, और 14A में ये भी लिखा था कि गवर्नमेंट में कंपलसरी रजिस्टर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इशू ए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड टू देम। और द सेम सेक्शन 14A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट सेज द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेंटेन ए नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन। तो सेक्शन 14A इस समय उसका लीगल बेसिस है। आज जो अमेंडमेंट हुआ है 1955 से, काफी कुछ अमेंडमेंट्स होते आए हैं, और उसमें इंक्लूडेड है फॉरेनर एक्ट ऑफ 1946, पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही क्लियर कर दिया गया है कि जो इंडियन सिटीजन हैं और जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा, किसी को नहीं निकाला जाएगा। एक नेशनल रजिस्टर नेसेसिटी है, नॉट ओनली इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में हर जगह पर एक नेशनल रजिस्टर होता है कि कौन से लोग वहां पर रहते हैं, कितने सिटीजन्स हैं, सेंसस होता है, उसके बेसिस पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं या क्या फैसिलिटीज किस कम्युनिटी में किस सेक्शन में हमारे को बनानी पड़ती है। तो इंडिया में इस समय जो हो रहा है, और जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया में रहकर देख रहे हैं कि इसका अपोजिशन हो रहा है, लेकिन काफी लोगों को पता ही नहीं है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इससे उन पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने और होम मिनिस्टर मिस्टर शाह ने क्लियर कर दी है।
जो विरोध करने वाले हैं उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो है, अक्सर जिस पर बात होती है, वो ये है कि मुस्लिम होने के नाते आपको बाहर कर दिया गया है, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी भारत की। तो धर्म के आधार पर अगर तय होगा कि किसको सिटीजनशिप देनी है और किसको नहीं देनी है, ये भारतीय संविधान के खिलाफ मानते हैं वो लोग।
लेकिन बात हम कर रहे हैं कि जो इवन मुस्लिम्स इंडिया में रह रहे हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी है, वो लोग आ सकते हैं, क्योंकि अगर ओवर द इयर्स देखा जाए सिंस 1947 से कि वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो माइनॉरिटी में है, उन पर बहुत अत्याचार हुआ है। अभी आप रिसेंट इंटरव्यू देखिए दिनेश कनेरिया का, जो क्रिकेटर था, और उसने साफ कहा है कि जब क्रिकेट टीम खेलती थी तो वो सारे के सारे हमारे साथ खाना भी नहीं खाते थे, तो उस दिनेश कनेरिया को अलग खाना पड़ता था। तो इस तरीके का जो व्यवहार है वो वहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में होता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो लोग यहाँ पर इंडिया में आएंगे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा और उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, लेकिन जो मुसलमान इंडिया में रह रहा है उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। और आज की हिस्ट्री में आप देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने, अगर देखा जाए जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश से 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में आए, क्या हमने किसी भी एक बंदे को बाहर निकाला? नहीं, और ना ही हम निकालने वाले। हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है ही नहीं कि हम किसी को डिस्प्लेस करें, हम सेटल करते हैं। हाँ, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स CA ये ज़रूरी है फॉर द फ्यूचर। तो ये लॉन्ग टर्म विजन अगर देखा जाए तो ये इंडिया के लिए अच्छा है।
क्या लाभ होगा, आपको क्या लगता है कि ये रजिस्टर बनने से क्या लाभ हो जाएगा?
इस लाभ से, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड बनेगी, आइडेंटिटी कार्ड के जैसे हमारा सेंसस होता है, उसमें पूछा जाता है कि भाई आपका जेंडर क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, उसके बेसिस पर फैसिलिटीज क्रिएट करी जाती हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो करीब 7-8 पेज का वो होता है सेंसस, उसमें सारे क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं और उसके बेसिस पर डेवलपमेंट और नई नई फैसिलिटीज क्रिएट होती हैं
जी। अच्छा एक सवाल, आखिरी सवाल होगा ये कि आपने कहा कि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुए हैं, जाहिर है इस वजह से बहुत सारे लोग वहाँ से आए भी, लेकिन क्या धर्म के आधार पर तय करना कि सिर्फ हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो तभी आ सकता है, अगर किसी मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है क्या उसको आने देने की इजाज़त ना देना उचित है?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मुस्लिम हैं और आपने कहा जैसे कि वो अगर प्रताड़ित हैं, तो दो बातें हैं उसमें, या तो वो लोग एज ए रिफ्यूजी इंडिया में आ सकते हैं, या जितने आगे 25 से करीब 35 मुस्लिम देश हैं वहाँ जा सकते हैं।
चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार, अपना समय हमारे साथ साझा करने के लिए।
थैंक यू वेरी मच।
अब हम दूसरा पहलू सुनाते हैं, मनोज जी से हमने बात की है, मनोज
शुरान से
जी,
और वो इस कानून के विरोधी हैं,
ये सुनते हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि सीए का जो विरोध है वो क्यों हो रहा है?
सर देखिए गौरव जी, सीए एनआरसी कॉम्बिनेशन का विरोध हो रहा है, और अब इसको डिस्कशन का मेरे हिसाब से कोई पॉइंट ही नहीं बचता कि क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखेंगे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, मेजोरिटी ऑफ 90% ऑफ दीज पार्टीज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एनआरसी, जिसमें स्टेट हाफ, मोर देन हाफ ऑफ इंडियन स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज सेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट, नंबर वन। नंबर टू, जो एनडीए जो गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसके 13 में से 10 एलाइज ने बोल दिया है कि वी आर अगेंस्ट दिस, तो हाफ ऑफ, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट सीएम्स आर सेइंग नॉट, वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग। आउट ऑफ 13 एलाइज ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, 10 आर सेइंग वी आर नॉट इम्प्लीमेंट, वी आर अगेंस्ट दैट, तो जो बच गए 3 एलाइज वो दे आर वेरी ऑलरेडी वेरी वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ देयर विजिबिलिटी एंड प्रेजेंस। तो पूरे देश में एक ही पार्टी अभी बची हुई है जो इसको लेके आना चाहती है, बाकी सब पार्टियां मोर और लेस इसके अगेंस्ट खड़ी है। तो ये तो एक ही पार्टी की प्लान होगी ना, विच मीन्स कि इतनी पार्टीज इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो सारा विरोध कर रही है, दुनिया भर में विरोध हो रहा है, डायस्पोरा विरोध कर रहा है, उनको कोई पर्सुएड नहीं कर रहा, डायस्पोरा विरोध कर रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें शामिल, मुस्लिम कम्युनिटी तो कर ही रही है और भी डायस्पोरा कर रहा है, स्टूडेंट्स जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट, IIT, IIM, एम्स जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं उनके छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब ये छात्र वो छात्र उनकी बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली विरोध करते ही नहीं है, जो डेमोस्ट्रेशन प्रोटेस्ट करते ही नहीं है, तो देश में ये प्रश्न ही नहीं रहा कि ये क्यों और क्यों नहीं।
लेकिन तो लेकिन सरकार, लेकिन तो सरकार जो है जी, सरकार कह रही है कि जो जो ये जो कानून है इसको वो वापस नहीं लेंगे, नागरिकता संशोधन कानून को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि आएगा और ये मानवीय आधार पर लाया गया है और इसका जो वहाँ के जो सिटीजन है, जो भारत के जो नागरिक हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे वो हिंदू हैं, उनको, उनके लिए नहीं है ये, जो है जो बाहर से आ रहे लोग हैं, ख़ासतौर पर 3 देशों से जो आ रहे शरणार्थी हैं उनके लिए और उनको नागरिकता देने के लिए है।
तो गौरव जी, सरकार ये बात बार बार कह रही है, जिस सरकार की बात कर रहे हैं उसमें मतलब बीजेपी ये बात कह रही है, बाकियों ने तो सबने कन्नी काट लिया है, बाकियों ने अपना कैटेगोरिकली पब्लिकली स्टैंड क्लियर कर दिया है, वो नहीं कह, वो इस बात को मान ही नहीं रहे।
गलत क्या है?
देखिए जितने भी अलायंस जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, डायस्पोरा की भी बात कर रहा हूँ, छात्रों की भी बात कर रहा हूँ, इनको इस चीज का विरोध नहीं है। अमेंडमेंट बिल लाया, 3 कंट्रीज की बात करी, उसकी माइनॉरिटीज अगर वहां पर रिलीजियस प्रोसिक्यूटेड है वो इंडिया में आ रही है, किसी को विरोध नहीं है, 1% भी है। मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, मैं भी एक दो प्रोटेस्ट में गया हूँ, मैंने भी बात करी है, मैं भी न्यूज को देख रहा हूँ, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बीजेपी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट, किसी को समस्या नहीं है कि रिलीजियस प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी जिसमें हिंदू, पारसी, सिख वो आए, एब्सोल्युटली वेलकम, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ नैरेटिव बनाया जा रहा है। विरोध इस चीज का है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है हमारे, कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर ने जो बातें लिखी थी, जो आज तक 70 साल की तक भारत में लागू हुई है, जो भारत उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, ये जो इस तरह की जो वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनसे, जो हमारे फोर फादर लिख के गए थे, वो सब आज तक देश में लागू हुई है 70 साल से. और देश को, हमारे देश को, बिकॉज ऑफ दीज वैल्यूज आज विश्व भर में हमारा देश तो गाइडिंग लाइट है इन वैल्यूज के कारण. तो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को, पार्टीज को, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सब तो डाइल्यूट हो रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो फोर फादर लिख के गए, तो इस चीज का विरोध हो रहा है. किसी को कोई परसुएड नहीं कर रहा, ये मैं बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ आपके चैनल से. डायस्पोरा ने कल भी विरोध किया, ऑस्ट्रेलियन डायस्पोरा ने, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था. इससे पहले मेलबर्न में भी 3-4 तरह के बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए. क्या कोई ऑपोजिशन पार्टी आके उनको परसुएड कर रही है? नहीं, ये एक सिटीजन मूवमेंट की तरह खड़ा हो गया है. तो ये सब नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टीज को भड़का रही है, एब्सोल्युटली रॉन्ग. आप देख ही रहे हैं ना दुनिया भर में, आज टोक्यो तक में विरोध हुए हैं दुनिया भर के देशों में, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, कहीं भी, हर जगह विरोध हो रहे हैं. कोई ऑपोजिशन पार्टी जाके थोड़ी परसुएड कर रही है, सिटीजन मूवमेंट.
विरोध जो है वो CAA को लेकर भी है, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी है, NRC को लेकर भी है, और NPR को लेकर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर भी है. क्या लिंक आप समझाएंगे हमारे श्रोताओं को कि क्यों विरोध हो रहा है?
देखिए, ये तीनों कहीं ना कहीं, इसका जो अगर आप बैकग्राउंड करके देखेंगे तो इसका ओरिजिन कहीं ना कहाँ से हो रहा है, आसाम से हो रहा है. इसका ओरिजिन पब्लिक डोमेन में 19 लाख वहां पे इलीगल माइग्रेंट, उसमें से 12 लाख नॉन मुस्लिम लोग थे. तो ये भी क्लियर है, मुस्लिम सिर्फ वहां पे 7 या 7 लाख के करीब मिले हैं. वहां से फिर उसको डाइल्यूट करने के लिए CAA लेके आए, ताकि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो समाज है उसको, अब वो 7 लाख हैं, उनको कैसे किसी तरह फ्रेंचाइज किया जाए. तो ये उससे लिंक है, NPR देन CAA.
डिटेंशन सेंटर को भी लेकर बात हो रही है. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि, दिल्ली में जो उनका भाषण हुआ था, उन्होंने कहा कि कहीं डिटेंशन सेंटर नहीं है और हम अगर इस तरह की तैयारियां करते तो डिटेंशन सेंटर भी ज़रूर बनाते. इसको लेकर भी विरोधाभास सामने आ रहा है, कई बोल रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, पहले भी हैं.
ये बताइए मुझे, देश के प्रधानमंत्री सारी की सारी बात पॉलिटिकल रैलीज में ही क्यों कहते हैं, और उन पॉलिटिकल रैलीज में बोल के वो कोई भी स्टेटमेंट देके क्यों देश में कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट करते हैं? और प्रधानमंत्री आज से पहले भी हुए देश में, सबने मीडिया कॉन्फ्रेंस करी है, क्वेश्चंस लिए हैं, आंसर दिया है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी रैली, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस? तो पूरे देश भर में तनाव का माहौल है, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, UNO तक ने बोल दिया है कि ये लॉ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी. यहां तक हमारे देश की साख, आज क्रेडिबिलिटी, साख जो हमारे देश की है उस पर क्वेश्चन मार्क हो गया है. तो प्रधानमंत्री का दायित्व है मेरे हिसाब से, दुनिया हमारे, जब हम बोल रहे हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो क्यों नहीं उसके जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, क्यों नहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्यों नहीं सारे क्वेश्चन जो देश के हैं, जो मीडिया के थ्रू जो क्वेश्चन लें उनका स्पष्टीकरण दें, क्यों नहीं वो कर रहे, क्यों नहीं वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, उसमें डिस्कशन करें? अगर पार्टी ऑल ओपोजिशन पार्टीज को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो क्यों नहीं वो डिस्कस कर सकते? जब इतना सोशल टेंशन हो गई है, अब यूपी में देखिए आप कितनी भारी सोशल टेंशन है, वहां प्रो का भी, प्रो CANRC की बातें हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, CANRC के की प्रोटेस्ट हो, हर जगह हो गया, ये फैल गया है, 22-23 लोग मारे जा चुके. तो इस तरह के तनाव भरे माहौल में, कंफ्यूजन भरे माहौल में क्यों वो पॉलिटिकल रैली में ही जाके बात कर रहे हैं और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं?
मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, कि क्या होना चाहिए?
रोल बैक की बात कर रहे हैं लोग, रोल बैक होना चाहिए, या रोल बैक ना हो तो कम से कम इसको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उसके बेंचमार्क के हिसाब से इसको डाइल्यूट करना चाहिए.
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया SBS हिंदी से बातचीत के लिए.
धन्यवाद.
दोस्तों, ये थे मनोज चौरान, जो कल सिडनी में विरोध प्रदर्शन हुआ उसके आयोजकों में से थे. और उससे पहले आपने बात सुनी डॉक्टर शरद गुप्ता की, जो विक्टोरिया से हैं और नागरिकता कानून के समर्थक हैं. तो दोनों पक्ष आपने सुन लिए हैं, दोनों की बातें आपने सुन ली हैं. अब आप बताइए आप क्या सोचते हैं. 1300-799-626 पर आपके कॉल्स का मैं इंतज़ार कर रहा हूं. तो बातचीत शुरू करते हैं. मेरे साथ बलजिंदर सिंह जी हैं सिडनी से. बलजिंदर जी, नमस्ते.
नमस्ते जी. सबसे पहले तो सभी आपके सुनने वालों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो.
जी, बहुत शुक्रिया. आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो.
और दूसरी बात है कि सभी और कंट्रियों के मुद्दों को छोड़कर आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना करो कि बरसात जल्दी से जल्दी ऑस्ट्रेलिया में आए।
जी बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि बारिश हो, इस मुश्किल से निजात मिले। लेकिन बहुत सारे लोग आप देख ही रहे हैं कि कितना गुस्सा है, कितनी नाराज़गी है और कितना समर्थन भी है ऑस्ट्रेलिया में भी इस इशू को। कल आपने देखा ही होगा कि कल भी एक प्रदर्शन हुआ है, इससे पहले भी 2-3 प्रदर्शन हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है बलजिंदर जी, क्योंकि हम तो खुद आप्रवासी हैं, माइग्रेंट हैं, हम कैसे देखेंगे इसको?
हम तो सबसे बढ़िया सबसे बात है कि मैंने अभी दोनों पक्षों को सुना
जी,
मेरी उन दोनों नेताओं को जो अपने आप को वो भारतीय कह रहे हैं, जो उनका ही मुद्दा उठाए बैठे हैं कि वो दोनों के दोनों ही वापस चले जाएं, जब तक वो आम मुद्दा सॉर्टेड आउट ना हो तो वो वापस मत आए, नंबर वन। नंबर टू, जो भी यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं अगर वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन नहीं है, वैसे तो उनको भी अधिकार नहीं है ये करने का इसका, क्योंकि ये तो वहां का मसला है, उनको सॉर्टेड करने दो। अगर जो करते जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन नहीं है या PR स्टूडेंट है, वो जैसे इंडिया ने उनको डिपोर्ट करके पकड़ दिया, दो यूरोपियन को डिपोर्ट कर दिया, वैसे ऑस्ट्रेलिया को भी कर देना चाहिए और या इनकी फोटो वगैरह लेके, क्योंकि दैट्स अगेंस्ट ये हॉस्पिटैलिटी को अब्यूज कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की को, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं चाहते किसी किस्म की तरक्की मचे, हम सभी खुशी से आप सब भाईचारे में रहना चाहते हैं
जी।
अगर इनको अपना जितना ही प्यार है तो जन्मभूमि में जाएं, बाद में जब वहां के मसले सॉर्टेड आउट कर जाएं, अगर ये अपने आप को लीडर मानते हैं, क्योंकि अब तो यहाँ तो सभी आप एक ही तो बुखारो विवेक कुमार जी, उसके नीचे से 3600 लीडर निकलाते हैं, बताओ आप किस किस को उनको सुनोगे, किस किस की बातें लोगों को आप दोगे सामने रखोगे?
चलिए हम तो जितनी दे पाए जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया बलजिंदर जी बात करने के लिए।
थैंक्स मैन, यस बाय।
ये है बल। अब मेरे साथ हैं श्याम कुमार पांडे सिडनी से। श्याम भाई नमस्ते।
नमस्ते सर,
कैसे हैं आप?
बस मैं ठीक हूँ सर, धन्यवाद आपने मेरा कॉल लिया और मेरा अपना बात लोगों के सामने रखने का मौका दिया।
जी जरूर।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस बारे में, हमें आप सबको याद होगा 89 से लेकर अभी तक कश्मीर में क्या हो रहा था, फिर ये सब बात को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए, मैं बहुत शॉर्टकट में समझने वालों के लिए बहुत इशारा काफी होता है, ये इतने समझते हैं ये CAA NRC और NPR जो आ रहा है, ये हमारे लिए कितना जरूरी है। अभी दानिश कनेरिया जैसा उदाहरण आप ले लीजिए, नहीं तो हम इसी तरह से और घटते जाएंगे और करते जाएंगे। हमें हमारी ये उम्मीद है, मोदी सरकार हमारा एक आस लेकर आया है, उम्मीद लेकर आया है, हम ऐसा मानते हैं, और बस जो लोग समझना चाहते हैं वो समझ गए। मैं इतना ही कह के अपनी बात को फिनिश करना चाहता हूँ।
चलिए बहुत शुक्रिया, आपने छोटे में बड़ी बात कही, बहुत धन्यवाद आपका।
थैंक यू
जी। ओके, ये मेरे साथ और साथी कई जुड़ रहे हैं, लेकिन आप भी कॉल कर सकते हैं 1300-799-626 हमारा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं भारत के नए नागरिकता कानून पर आप क्या सोचते हैं। तपन है मेलबर्न से अपनी बात कहने के लिए। तपन नमस्ते।
नमस्ते विवेक जी, कैसे हो?
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
गुड गुड, थैंक यू
जी।
अब जस्ट क्विकली, आई नो इट्स अवेलेबल टाइम, जस्ट आई वुड लाइक टू जस्ट फ्यू लाइंस रिगार्डिंग CAB and CAA।
श्योर,
बिकॉज आई थिंक NSA इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस, बिकॉज इट्स अ बिग चैप्टर। तो देखिए, CAB अभी बिल तो एक्ट हो गया है, नाउ सम सेक्शन ऑफ आवर community protesting against it. From my personal view, reading all the acts, Indian government has done a too little too late. Ye pehle hi kar dena chahiye tha. Because without going in details, jo India divide hua hai based on religion, we all know that, but going in details, abhi jo hum log ka jo India ka jo neighboring countries hai, wo clearly jo नॉन मुस्लिम्स है, बिकॉज वहाँ का जो बाय लॉ देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज यू नो इस्लाम्स, सो नॉन मुस्लिम्स आर प्रोसिक्यूटेड एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विदाउट गोइंग इन डिटेल्स। तो इंडियन गवर्नमेंट हिस्टोरिकली दे शुड हैव डन वेल बिफोर दिस टुडे, बट सो फार इज जो प्रोटेस्टिंग की बात है, व्हाई पीपल डूइंग इन दिस प्रोटेस्टिंग, इतना एग्रेशन के साथ क्यों कर रहा है, ये मेरा सवाल है। And they're all educated, from university student, and these days everyone has got smartphone, they can read the act. And on apart from that, the parliament made both side mein hi discussion hua hai. So both side in a sense, both houses. So usme to ekdam clear bataya gaya ki kya hai. So CAA jo abhi act bana hai, iske andar to koi confusion hai hi nahi. It's nothing to be aisa Muslim ho ye Muslim logo ke liye koi discrimination nahi hai, because ye only people are sheltering here due to some prosecution. तो मेरे हिसाब से ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो प्रोटेस्ट होना ही नहीं चाहिए. अगर हो करना है यस, तो पीसफुल माइंड से करना चाहिए. ये पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करना ही नहीं चाहिए विदाउट एनी टेकिंग लॉन्ग टाइम. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है
जी. बहुत बहुत धन्यवाद अपन जी, आपने इतनी स्पष्टता से अपनी बात रखी है, बहुत शुक्रिया.
थैंक यू.
फिर इंतजार रहेगा किसी और मुद्दे पर आपसे बातचीत का.
एब्सोल्युटली श्योर. थैंक यू अगेन गौरव एंड ऑल लिसनर्स. थैंक यू. बाय
बाय. ये तपन जी थे और वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन होने ही नहीं चाहिए, और प्रदर्शन हो तो शांतिपूर्ण होने चाहिए, उसमें कोई किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए. जैसा कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जितने भी प्रदर्शन हुए हैं उनमें किसी भी प्रदर्शन में ऐसी किसी घटना के बारे में हमने नहीं सुना है जैसी भारत से खबरें आ रही हैं. लेकिन आप क्या सोचते हैं? 1300-799-626 पर कॉल कीजिए, बताइए क्या आपको लगता है कि भारत को एक नए नागरिकता कानून की ज़रूरत है, ऐसे कानून की जहां सिर्फ मुस्लिम्स को कहा जाए कि उनको हमारे देश में शरण नहीं मिलेगी, बाकियों को शरण मिल सकती है, और वो भी सिर्फ 3 देशों से इस कानून में कहा गया है. आप क्या सोचते हैं? मेरे साथ गुप्ता जी हैं, MM गुप्ता, हमारे बहुत प्यारे बहुत पुराने श्रोता हैं. गुप्ता जी नमस्ते.
नमस्कार. नमस्कार विवेक जी, क्या हाल चाल है?
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास
जी.
मैं सुन रहा था बात उनके फॉर एंड अगेंस्ट दोनों की तरफ से
जी.
ये जो एक्चुअली हुआ क्या है कि जो भी कानून या जो भी इंप्लीमेंट करते हैं हमारे ये प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये बड़ी हेस्टली हर चीज करते हैं. यानी कि मैं जो देख पाया हूँ कि पहले एक चीज कर दो, एक्ट फर्स्ट एंड थिंक लेटर. आप शुरू से देख लीजिए ऐसा ही रहा हिसाब किताब. जहां तक इनका NRC और NPR का है, अब ये कहां से शुरू हुआ? शुरू हुआ था ये आसाम से, जैसे भाई साहब ने एक ने बताया कि आसाम से ये शुरू हुआ. तो इन्होंने जो NRC वहां पे करवाया, इतना पैसा खर्च किया, 1200 से कोई 1200 करोड़ कह रहा है, कोई 1600 करोड़ कह रहा है, और इतना खर्चा लग गया. जब वो खर्चा लग के जब निकला क्या उसमें निकल के बाद में आया कि ये तो फंस गए इसमें, हम जो किया वो तो गलत कर दिया. अब उसके पास भी CCA आ गया, CAA आ गया, अब CAA प्रोटेस्ट हुए, हर चीज हुआ, तो NPR आ गया. ये सब चाहे दाएं से पकड़ लो बाएं से पकड़ लो, हैं सब एक चीज, ये दिस इज वन एंड सेम थिंग. और उसके ऊपर सिर्फ बताया ये जाता है कि इस NRC पे तो 2014 से कभी भी सरकार के भीतर कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं. एज पर आवर वर्दी प्राइम मिनिस्टर, जो उन्होंने रामलीला ग्राउंड में अभी हाल ही में भाषण दिया था, तो उन्होंने ये चीज कही थी. तो जब ये चीज अगर डिस्कशन ही नहीं हुआ था, ये मुद्दा कहाँ से बन गया? ये लोकसभा में वो कह रहे हैं कि डिस्कशन नहीं हुआ, और ऊपर से हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया लोकसभा में कि पहले जो है ये सिलसिलेवार हर चीज जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. पहले NRC आएगा, पहले CAA आएगा, फिर NRC आएगा, वट एवर इट इज. यानी कि उन्होंने ये लिंक बताया कि ये सब चीजें हम करने जा रहे हैं. तो मेरे हिसाब से कुछ क्लैरिटी नहीं है, लोगों में असमंजस सा माहौल है. और कोई भी कुछ चीज होती है, देखिए विवेक जी, नागरिक हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, नागरिक सब हमारे हैं, सब भारतवासी हैं, उनसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है. शुरू से लेके आप देख लीजिए, जब से प्रेजेंट डिस्टेंसेशन बैठी हुई है, कोई भी मुद्दा हो ये बातचीत करने में इनका थोड़ा सा हाथ तंग है, करते नहीं बात किसी से, चाहे वो आदमी जो मर्जी उनके विचार हों, बात नहीं करनी है बस उनसे. आप बैठ के बात करें, बात करके हर चीज का हल निकलता है. तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा प्रयत्न नहीं है. बाकी हम भी यही चाहते हैं कि वॉयलेंस कहीं से लेके कहीं तक ना हो, पर जो है आपका एजुकेशन करना आपका एक राइट है. आप डिसेंट अगर आप बोलेंगे नहीं खिलाफ किसी के, अगर आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि आप चाहते क्या हो. तो मेरे हिसाब से ये जो हो रहा है कि 20,000 आदमी इकट्ठा हो रहा है प्रो के लिए, है जी, कि हम इसके इस एजुकेशन के हम कोई प्रो है कोई अगेंस्ट है. आप बॉम्बे में देख लीजिए आप, कि एक आदमी आते हैं, एंटी वाले आते हैं, 20,000 आदमी, प्रो वाले आते 25,000 आदमी, अरे वी आर अभी लिविंग, वी आर लिविंग जंगल रूल, व्हाट्स ऑल दिस, ये क्या हो रहा है ये? बातचीत करिए आप उनसे, ये कोई ये बताने वाली बात है कि मैं इसमें ज्यादा ताकतवर हूँ और आप ज्यादा कमजोर हैं?
हाँ सही बात है, ये कोई पॉइंट स्कोरिंग, ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की तो जगह नहीं है।
हाँ तलवारें थोड़ी आपने निकाल कर कोई आपस में करना है कि उसके साथ 10,000 है, उसके साथ 12,000 है। नो, वी आर ऑल सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट नेशन। तो हमारा यही कहना है कि उनसे बैठ के बात करिए, बात करके हल निकालिए, और बिना बातचीत के कोई हल नहीं होगा। ये मेरे आपसे गुजारिश है कि दिस इज व्हाट माय पर्सनल व्यू इज।
बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, बहुत समझदारी भरी बात कही आपने, थैंक यू सो मच।
थैंक यू
जी। आपने MM गुप्ता को सुना, उनकी राय सुनी। अब मेरे पास मेलबर्न से साजिद हैं। साजिद नमस्ते।
नमस्ते,
कैसे हैं आप जी?
बस ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
हम ठीक हैं। बताइए हुजूर, क्या सोचते हैं आप?
देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मोदी और अमित शाह दोनों इतने झूठे हैं, मतलब एक पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये हर इंडियन को पता है कि ये दोनों भी झूठ बोलते हैं।
ये आपकी राय है, मैं स्पष्ट कर दूं।
मेरी राय है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ।
हाँ।
चलिए, मेरे साथ कुछ और लोग सोचते भी होंगे, शायद वो बहुत झूठे हैं या कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और एक चीज ये है कि सीधी सीधी बात, अगर मैं एक एग्जाम बोलता हूँ, आपके घर में अगर आपके फैमिली मेंबर 5 मेंबर है, आपके घर के फैमिली मेंबर को निकाल देना चाह रहे हैं और दूसरे मेंबर को आप अलाव करना चाह रहे हैं, तो ये मतलब ये चीज हो गया कि आप अपने खूनी रिश्ते को बदल के आप दूसरों को जो अलाव कर रहे हैं, मतलब।
पर सजी भाई, ये तो बात बहुत बार कही गई है कि किसी को नहीं निकाला जाएगा, ये बात बार बार कही जा रही है।
नहीं नहीं, आप कह रहे हैं, आपके पेपर में कह रहे हैं, पर उनको ये पता है कि वो निकालेंगे। किसको निकालेंगे? घुसपैठियों को। भाई आपके पास घुसपैठी आया कहाँ से? अगर कोई किसी के पैदाइशी, अगर आप 1970 के अगर कोई किसी के डेट ऑफ बर्थ आप जाके निकालें, कहाँ से निकालेंगे? और आपको पता है आपके आपके आज के जनरेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आप कहीं पे भी देख लो, आज भी लोग होम डिलीवरी होती है घर में, जहाँ पे जिनके पास मेडिकल सर्विसेज नहीं है। अभी भी आप देहात में चले जाओ, वहाँ पे आपके घर में डिलीवरी होती है, कहाँ से लाएंगे आप? अगर वहाँ पे अगर मुसलमान होता है, वहाँ पे अगर डिलीवरी घर में करता है, तो वो सीधा सीधा बैठिए घुट बैठिया हो गया, क्योंकि वो अपना क्या बता, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बता सकता।
सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास बहुत थोड़ा सा समय बचा है और एक दो कॉलर और है, आपने अपनी बात रख दी, बहुत शुक्रिया साजिद भाई।
ठीक,
शुक्रिया। जल्दी से कॉल ले लेता हूँ, कमल भाई काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कमल, आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा, जल्दी से अपनी बात कह दीजिए।
हाँ, जल्दी से मैं दो बातें बताऊंगा
जी।
एक तो ये कि ये जो सीए हो गया या फिर ये राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, ये सारा बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऑलरेडी था। अगर मोदी और अमित शाह ये सब नहीं करते, तो जो इंडिया के जो वोटर्स है उनके साथ धोखा हुआ होता। ये सब उन लोगों ने बता के किया हुआ है। एक तो ये बात है कि ये होना ही चाहिए था। और जो गवर्नमेंट होती है उसका ओनर कौन होता है? ठीक है, पब्लिक जो होती है वो गवर्नमेंट की ओनर होती है। तो पब्लिक ने अगर मैनिफेस्टो पढ़ के वोट दिया है कि भाई आप काम करो, 303 सीटें हम आपको दे रहे हैं, आप हमको ये राम मंदिर करके दो, 370 निकल के दो और ये सीए करके दो, तो फिर अब जब हो रहा है तो फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? एक ये बात है। और दूसरी बात ये है कि अभी जितना भी विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो इट इज अ मिरर टू इंडियन सोसाइटी कि हम एज ए सोसाइटी हम कितने अनपढ़ हैं, हम कितने जाहिल हैं। क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि भाई 2014 की कट ऑफ डेट है, उससे पहले जो हिंदू आ गए हैं उसके लिए ये हो रहा है, और वो सारे हिंदू भी कौन है जब इनको इनके पास?
नहीं, सवाल तो यही है कि सिर्फ हिंदू क्यों, मुसलमान क्यों नहीं?
क्योंकि वो माइनॉरिटी है वहाँ पाकिस्तान की, और उनको बताया गया था आज
तो बर्मा की माइनॉरिटी क्यों नहीं? क्योंकि बर्मा की माइनॉरिटी मुसलमान है, और वो तो बहुत सारे लोग आए भी हुए हैं ऑलरेडी।
हाँ, बर्मा और इंडिया एक कंट्री नहीं था पहले। पहले जो लियाकत अली खान और नेहरू की जो अरेंजमेंट हुई थी कि भाई जो ऐसे भी लोग होते हैं, सपोज ऑस्ट्रेलिया कल डिवाइड हो जाए,
हाँ जी,
मेरे पास पैसे ना हो अगर बर्थ जाने के, ठीक है, और मैं यहाँ पे रुक गया, और फिर गवर्नमेंट बोले कि मुझे कि आप जब आपको जब भी जाना होगा पर आप आ सकते हैं।
चलिए, आपकी बात कट जाएगी अगर आप बोलते रहे तो, क्योंकि समय पूरा हो गया है। पर बहुत शुक्रिया कमल जी, आप हमेशा कॉल करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, बहुत धन्यवाद। इजाजत लेते हैं दोस्तों, अच्छा लगा आपसे बात करके, नमस्ते।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।